तफसीर देखते हैं आज की लेसन की। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में कि किस तरह अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया कि जो फजूल रस्में होती हैं, सुपरस्टिशियस बातें, कोई कह रहा है कि हम घरों के पीछे से आएंगे तो वो नेकी है, कोई कुछ ही चीज को नेकी समझते हैं, नेकी तकवा का नाम है। अल्लाह के नजदीक तुमने सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला है। और आप देखेंगे आज के लेसन में भी, पिछले लेसन में भी, वत्तकुल्ला वत्तकुल्ला, तकवा तकवा, इतनी तकरार है ना तकवा की। और तकवा ही इंसान की इबादात में से खत्म हो जाता है। इसी तरह हमें किताल के बारे में पता चला कि किताल किन सूरतों में होता है और फितना क्या चीज होती है जिसको इस्लाम खत्म करना चाहता है। और फितना कत्ल से भी ज्यादा बुरी चीज है, ज्यादा सख्त चीज है। और फिर हमें इन आयात की भी जो सही तफसीर है वो समझ आई, जिनसे बहुत सारे लोगों को बदजन किया जाता है इस्लाम से कि देखो जी इस्लाम तो ये कहता है कि बस कत्ल कर दो इनको जहां पे भी ये मिले, तो ऐसा नहीं है। फिर हमें ये पता चला कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना कितना जरूरी है, वरना ये हलाकत है। जैसे इंसान अपने हाथों से खुद को हलाकत में डाल रहा है अगर वो अल्लाह के दीन की खातिर नहीं खर्च करता, उसकी उसके उसकी तरक्की के लिए, उसको आगे पहुंचाने के लिए, उस रास्ते में अगर नहीं खर्च करता कि दीन की इशाअत हो, दीन स्प्रेड हो, इसके लिए नहीं अगर खर्च करेगा ना, तो अपने आप को हलाकत में डाल रहा। अब आगे आ गई हज और उम्रे की बात, इसको भी देख लेते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने बताया कि हज और उम्रे के अंदर कोई मसाइल आ जाए तो उनको कैसे फिर सॉल्व किया जाए। सबसे पहली बात, वह अतिमुल हज वल उम्रा था, किसके लिए? लिल्ला, तमाम करो, यानी पूरा करो हज को और उम्रे को, यानी इसके पूरे मनासिक करो, सारी चीजें उसकी कंप्लीट करो। जब एक दफा चल पड़े हो तो उसको पूरा करके ही आओगे, बात समझ आ गई। और ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, दूसरी भी जिंदगी की जितनी चीजें आप देखें ना, अगर आप उनको पूरा ना करें, आप एक खाना बना रही हैं, आपने पूरा ही नहीं किया, आधा गोश्त कच्चा, आधा पक्का, आधा मसाला भुना, आधा नहीं भुना, वैसे छोड़ के चली गई, तो वो किसी खाने के काबिल रहेगा? तो कोई भी जिंदगी का काम अगर आप उसको मुकम्मल ही नहीं, आप अपनी जॉब, आपको किसी ने जॉब के लिए हायर किया, आपने वो प्रोजेक्ट ही नहीं पूरा किया, क्या मिलेगा आपको उस पर? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह मामलात इबादात के भी हैं, इसी तरह जो भी काम आप अल्लाह की खातिर करते हैं ना नेकी का, उसको भी पूरा करना जरूरी है। आप दुनिया के मामले में सोचते नहीं कंप्लीट करना है, मैं जॉब कंप्लीट करके आऊंगी, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका यही होता है ना, तो फिर क्यों नहीं दीन के मामले में हम ये सोचते कि कंप्लीट करना है। अब जैसे रोजों का भी आया कि अगर कोई मरीज है और सफर पे है तो वो कंप्लीट करे अपनी गिनती को, पूरा करो दूसरे दिनों में, यानी पूरा उसमें भी करना है, किसी वजह से रह गया था उस वक्त अगर रमजान में, बाद में आपको कंप्लीट करना है। इसके मैं इसलिए इतना जोर दे रही हूँ कि बाद लोग बहुत शौक से इन कोर्सेज में आते हैं, बड़े जोश आया किसी दिन कोई दर्स सुन लिया, अब आ तो गए, अब किसी दिन कोई टेस्ट में मसला हो गया, टेस्ट देना मुश्किल लग रहा है, या कोई ग्रुप में जाना मुश्किल लग रहा है, या कुछ याद करना में मसला हो गया, हाय हाय ये तो हमसे नहीं होगा, तब छोड़ छाड़ के बैठ गए। नहीं, ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। जो काम भी अल्लाह की खातिर करें, देखिए हम अल्लाह की खातिर ये सीख रहे हैं ना, अब इसमें मुश्किलात भी आएंगी, कोई हर्डल्स भी आएंगी, वो मसले भी आ सकते हैं, इसको छोड़ के बैठना ये सलूशन नहीं है। अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जो रेगुलरली किया जाए, मुसलसल किया जाए। और इबादात में देखा कितनी ताकीद से यहाँ पे कह दिया, आतिमू पूरा करो हज और उम्रे को, नहीं अल्लाह ताला इनकम्प्लीट चीजों को नहीं पसंद करता, क्या दूरी दूरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और हम क्या एक पारा पढ़ा उसके बाद छोड़ के बैठ गए जो भी फॉर वट एवर रीजन। नहीं, जब आप शुरू करें तो सोचें कि मैंने इसको मुकम्मल करना है। बाद लोग 10 काम शुरू कर लेते हैं, एक भी नहीं उनमें मुकम्मल होता, इधर भी हाथ डाला हुआ, उधर भी कोर्स लिया हुआ, इधर भी किया हुआ, कार एक भी नहीं सही से सकते, तो ऐसे का क्या फायदा मुझे बताएं, एक भी मुकम्मल ना हुआ। इससे बेहतर नहीं कि आप जो शुरू करें उसको कम से कम पाए तक मील तक पहुंचाएं। जब हम दुनिया में नहीं ये पसंद करते कि कोई काम शुरू किया जाए और उसको कोई अधूरा छोड़ के चला जाए, आपके घर कोई सफाई वाली आई है वो आधा काम करती आधा छोड़ के चली जाती, आपको कैसा लगता है? हम दुनिया के कामों में अपने लिए नहीं पसंद करते और अल्लाह के लिए वो काम करते हैं जो अधूरे अधूरे हैं, जिसमें कोई भी मुकम्मल नहीं है। तो सबसे पहली बात यह कि पूरा करना, या हज के लिए निकले उसको पूरा करें, उम्रे के लिए निकले उसको कंप्लीट करें, और किसके लिए करें, लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए। इन उसिर तुम, फिर अगर तुम घेर लिए जाओ, घेर लिए जाओ यानी क्या मतलब है कि आप यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे 6 हिजरी में उम्रे के लिए निकले थे और आगे काफरों ने कहा कि नहीं आप इस साल नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो वापस कर दिया गया। अल्लाह का तो हुक्म है ना कि पूरा करना है आपने। लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, मसलन आज के हालात में एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है कि नहीं इस वक्त आपको वहां पे पाबंदी लगा दी गई है, आप नहीं जा सकते, एंटर नहीं हो सकते उम्रे हज के लिए, हालांकि आपके पास वीजा भी अभी है, पासपोर्ट भी है, टिकट भी है, सब है, लेकिन अथॉरिटीज ने आपको नहीं जाने दिया, एयरपोर्ट से वापस कर दिया। अब आपने एहराम भी बांधा हुआ है, आपने नियत भी कर ली है, तो अब क्या करें, फिर तो कुछ होना चाहिए ना यार। अल्लाह ना करें कहीं जा रहे थे, फिर एहराम भी बांध लिया था, नियत कर ली थी, तो अब इसका मतलब है कि आप निकल पड़े उस सफर पे, तो अब क्या है, अब आप ऐसे कहीं खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाती है, आप पहुंच ही नहीं सके वहां पे, या वहां पहुंचे तो ऐसे बीमार पड़ गए कि आप जा ही नहीं सके अराफात तक, या आप उमरा ही नहीं कर सके या हज नहीं कर सके, तो फिर क्या करो, फमस्तई सरा मिनल हदी, तो जो भी मुयसर आए कुर्बानी का, कुर्बानी कर दो। तो यानी जो भी बंदा ऐसे किसी वजह से रोक दिया जाए, वो निकला था हज के, उससे उसने आराम पहन लिया था, तो अब रोक दिया गया, तो अब कुर्बानी करना जरूरी है, ऐसे नहीं कि आप आराम से घर आ जाएंगे। वला तहलिकु रुउसकुम हत्ता यबलू अल हदी महिल्ला, और ना तुम मुंडाओ अपने सरों को यहां तक के पहुंच जाए कुर्बानी अपनी हलालगाह को। यानी अब आपने जो कुर्बानी दी है वो आप क्या करेंगे, अब आपने जब तक कुर्बानी अपनी हलालगाह तक ना पहुंच जाए, यानी अगर हज है तो वो मीना में पहुंच जाए और वहां पे कुर्बानी हो जाए, किसी को आप कह दें कि वहां पे कुर्बानी कर दे आपकी तरफ से, या उम्रा है तो आपने कुर्बानी वहां पे भेज दी, जब तक वो अपनी जगह पे ना पहुंच जाए, वहां पे कुर्बानी ना हो जाए, उस वक्त तक सर ना मुड़ाओ, ये कहा गया। यानी एहराम से निकलने के लिए ये है, ये एहराम से निकलने के, ऐसे ही नहीं एहराम से की पाबंदियों से निकल सकते, क्योंकि एहराम बांध लिया ना एक दफा, तो अब या तो पूरा करें, अब हो गई बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी, इंसान के कंट्रोल में ही नहीं है, अब वो इरादे से तो गए थे, अब आज के हालात में देखिए इरादे से निकले, एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया, बेचारे वो क्या करें, तो अब ऐसे ही नहीं वो आराम, अगर उन्होंने आराम बांध लिया, अगर तो वहां तक निकाह तक पहुंचे ही नहीं, आराम ही नहीं बांधा, या अभी नियत ही नहीं की थी, तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने आराम में आ गए हैं, नियत कर ली है, तो अब वो वेट करेंगे जब तक के वहां पे कुर्बानी ना पहुंच जाए, फिर वो अपना सर मुंडा ले मर्द जो है। तो इससे पता चलता है ऐसे ही नहीं है हालत आराम से निकला जा सकता। अब वो पता है ना आदमियों के लिए तो आराम के कपड़े भी होते हैं, लेकिन हालत आराम एक अलग चीज है, आराम सिर्फ कपड़े नहीं है, हालत आराम मतलब है औरतों ने चाहे कोई खास लिबास नहीं भी पहना हुआ, लेकिन उनके ऊपर भी पाबंदियां तो है ना वो आराम की, तो वो उन पाबंदियों को, उन रिस्ट्रिक्शन से निकल नहीं सकती जब तक ये नहीं करें। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रासिही, तो जो कोई तुम में से मरीज हो, यानी किसी को पहले बाल काटने पड़ जाए, अभी हदी महिला तक पहुंची नहीं है, या वो मरीज हो, उसको कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी अजियत लाहक हो जाए किसी को, जिसकी वजह से उसको अपने सर मुंडाना पड़े, अब अजियत के अंदर किसी को जुएं पड़ सकती हैं, उसको सर मुंडाना पड़ा, या कोई ऐसा किसी का सर में मसलन कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो अपने सर के अंदर कोई स्टिचेस लगाने हैं, वो बाल वहां से उतारते हैं स्टिचेस लगाने के लिए, तो फिर वो क्या करे, फिदिया तुम मिन सियामिन और सदफतिन और नुसुक, तो फिर तीन में से एक ऑप्शन है उसके पास, फिर या तो रोजे रखे, रोजे कितने रखे, 3 रोजे, ये हदीस से पता चलता है, या फिर सदका कर दे, कितना सदका करे, अपनी मर्जी से नहीं, हदीस से पता चलता है 6 मिस्कीनों को खाना खिला दे, या फिर एक कुर्बानी कर दे अल्लाह के रास्ते में, एक बकरी दे दे बस। तो इससे पता चलता है कि अपनी मर्जी से नहीं जाके आपको भी आराम पहन लें, कभी आराम से निकल आए, कभी कुछ कर लें, अपनी मर्जी से नहीं ये चीजें कर सकते। फाइजा अमीन तुम, फिर जब अमन में आ जाओ, यानी अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, अब जो रुकावटें थी अब उन्होंने खोल दिया है हज उमरे वालों के लिए रास्ता, अब कोई रुकावट नहीं, या इंसान अगर बीमार हो गया था तो अब वो तंदुरुस्त हो गया है, या जो भी उसकी रुकावट थी जिसकी वजह से वो पहले नहीं जा सका था, तो अब हालात ठीक हो गए हैं, तो अब फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज, तो जो कोई फायदा उठाए उम्रे का हज में, यानी हज तक जो कोई उमरा करे। एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड क्या है कि जाहिलियत के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जब कोई लोग हज के लिए जाते थे ना, तो उमरा नहीं करते थे। उमरा करने को वो हराम समझते थे, नाजायज समझते थे, कहते थे हज करने जा रहे हैं और उमरा भी करके अपना फायदा उठा रहे हैं कि हम इसी के अंदर उमरा कर रहे हैं। उमरे के लिए आपको अलग जाना चाहिए, ये नहीं कि आप हज के अंदर ही उमरा कर लो तो फिर क्यों उमरे की वैल्यू रह जाएगी, आपने तो उसका पार्ट ही बना दिया। तो अल्लाह ताला ने बाद में इस चीज को खत्म कर दिया और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी बड़ी सहूलत कर दी कि अब जो कोई वहां का रहने वाला है ना, जो जो कोई यानी मक्का का रहने वाला है, वो तो सिर्फ हज ही करे, जिसको कहते हैं हज इफराद, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हज इफराद, यानी वो सिर्फ हज करे, वो उमरा कभी बाद में और करे, हज के साथ ना करे। लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं, उन जैसे हमारे जैसे लोग जिन्होंने एक दफा कभी जिंदगी में जाना हो, या बार बार मौका नहीं मिलता हो, या इतना महंगा हज उमरा हो, या पहले जमाने में इतना मुशक्कत थी, लोग महीनों का सफर कर करके वहां पहुंचते थे और उनको पता नहीं होता था जिंदा वापस आना है या नहीं, आए तो आए वरना नहीं, उनकी कोई खैर खबर ही नहीं होती थी, कौन से कोई फोन थे या कुछ थे, तो लोग चले जाते थे फिर जब आते थे, इसलिए तो इतनी खुशी मनाई जाती थी कि वो हज से आ गए, वो बहुत बड़ी बात होती थी हज करना। तो फिर अल्लाह ताला ने सहूलत दे दी कि जब दूर से आते हैं उनके लिए मुश्किल है तो वो उमरा भी साथ कर ले, उमरे का भी फायदा उठा ले हज के साथ। तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सहूलत दी ना। अब बेचारे कई लोग कितनी मुश्किलों से पैसे जोड़ जोड़ के फिर हज के लिए आते हैं, उनके लिए कहाँ पॉसिबल है कि बार बार उमरे के लिए जाए, तो उनके लिए भी कितना सहूलत हो गई। यानी आज के वक्त में अगर सहूलियात हैं सफर की, लेकिन इतना महंगा है हर कोई नहीं जा सकता, तो वो हज के साथ ही उमरा कर ले, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो फायदा उठाए ना उमरे का हज तक, यानी जिसमें आप देखें हज तमत्तो में भी आप उमरा भी करते हैं और हज भी करते हैं, हज किरान में भी आप उमरा भी करते हैं और हज भी करते हैं, हम सब जो है जितने भी सुनने वाले हैं वो सब यही दो करते हैं हज, क्योंकि हमें कोई भी मक्का के अंदर अनलेस आप रहने वाला हो तो फिर वो सिर्फ हज करेगा। तो फमस्त ही सारा मिनल हदी, तो अब अल्लाह ताला ने ये जो तुम्हें फायदा दे दिया ना कि तुम उमरा भी कर सकते हो हज के साथ, अल्लाह ने तुम्हें ये एक सहूलत दे दी ना, इसके शुक्र के तौर पे अब तुम क्या करो, जो भी कुर्बानी तुमसे मुयस्सर आए तो करो। इसी वजह से हज इफराद वाले कुर्बानी नहीं वहां पे करते, हज तमत्तो और हज किरान वाले करते हैं। तो ये वहां पे एक हम शुक्राना शो करते हैं कि अल्लाह ताला कि तूने हमें उमरे की भी तौफीक दे दी इसके साथ। फमल्लम या जित, तो जो नहीं कुर्बानी कर सके, नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, मुश्किलों से तो हज पे पहुंचा है, वो कहाँ कुर्बानी करेगा, तो उसके लिए ऑप्शन है फसियामु सलासती अय्यामिन फिल हज, तो ऐसा करे वो कि 3 रोजे हज के दिनों में रख ले। हज के दिन कौन से, फर्स्ट जिल हज से लेके 9th तक के दरमियान 3 रोजे रखते। वह सबातिन इजारा जातु, और 7 रोजे जब हज खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद, चाहे वो वहीं पे रह रहा है तो तब रख ले, चाहे घर आ गया तो तब रख ले, मगर हज के दिन जो ये आम तशरीक है वो खत्म हो जाए 13 तारीख के बाद, वो किसी वक्त भी कर रख ले। तिल का आशरत उनका मिला, ये टोटल कितने हो गए, 10 रोजे हो गए, ये उसके लिए। देखिए हर एक के लिए अल्लाह ने सहूलत दी है। जो ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो ना करें कुर्बानी, मतलब कुछ लोग देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि मुश्किलों से हज के लिए सफर करके जाते हैं, अब वो उनसे कहते हैं आप कुर्बानी के लिए पैसे दें, हो सकता है जिसके पास नहीं हो, तो ये ऑप्शन तो किसी को पता ही नहीं होती आज कि अगर मेरे पास नहीं है कुर्बानी के पैसे तो ठीक है कोई बात नहीं, कुर्बानी ना करें, फिर वो इस तरह 10 रोजे रख लें। जालिका, ये उसके लिए, लिमन लम यकुन अहलु हादरिल मस्जिद हराम, ये उसके लिए जो मस्जिद हराम के रहने वाले नहीं है, जिसके घर वाले मौजूद नहीं है मस्जिद हराम में। क्या मतलब है इसका, मतलब वो रेजिडेंट नहीं है वहां का, यानी वहां का रहने वाला नहीं है, वो उसकी फैमिली वहां पे नहीं है, वो मुकीम नहीं है, वो ये कर सकता है कि उमरे को हज के साथ मिला के कर ले। बात समझ आ रही होगी उम्मीद है, इजी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या बात की कि सब जो आउटसाइडर्स हैं, जो हरम से बाहर के लोग हैं, नॉन रेजिडेंट है वहां के, वो उमरा और हज साथ कर सकते हैं, जैसे हम सब करते हैं जब जाते हैं, तो हम पहले उमरा करते हैं फिर उसके बाद हज करते हैं, और वो फिर कुर्बानी करें वहां पे। जो नहीं कुर्बानी कर सकता वो 10 रोजे रख ले, 3 पहले और 7 बाद में। वत्तकुल्ला, और डरो अल्लाह से। लेकिन फिर आ गई बात वत्तकुल्ला, इसलिए कि बाज दफा इंसान ना सिर्फ इन रिचुअल्स में पड़ जाता है, ये करना है, रमी करनी है, कुर्बानी करनी है, सर मुंडाना, ये याद नहीं रहता क्यों कर रहे हो, ये कोई रस्में थोड़ी है जो तुमने सिर्फ निभानी है और बस हो गया, नहीं सोचो कि हम यहाँ पे क्यों आए, सोचो कि हमारे यहाँ पे से क्या लेकर जा रहे हैं, किस हालत में आए थे और किस तरह हमने जाना है यहाँ से, इन सारे अरकान के पीछे अल्लाह हमें क्या सिखाना चाह रहा है, सब चीजें हैं। आलमो अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, जान लो अल्लाह ताला बड़ी सख्त सजा भी देने वाला है, यानी अगर अल्लाह की हदों को तोड़ोगे ना, जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं वो इनको लाइटली ना लो कि हमें कोई डर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो मर्जी करूँ, ये नहीं होगा। याद रखना फिर अल्लाह सजा भी सख्त देने वाला है, और हमें ये समझना चाहिए कि जब हम हज उमरे के लिए जाएं तो हमें ये अहकाम पता हो, ना कि हम अपनी मर्जियां करते रहे। الحج اشهر معلومات, حج کے جو ہے نا مہینے وہ معلوم ہے, اس کا مطلب حج کے بھی کوئی مہینے, آپ کو پتا عمرے کا تو کوئی مہینہ نہیں, آپ کبھی بھی سال بھر میں جائیں عمرہ کر سکتے, لیکن حج کے اسپیسیفک مہینے ہیں, آپ اس کے علاوہ اپنی مرضی اپنی کنوینئنس سے جا کے حج نہیں کر سکتے, اور حج کے مہینے کون سے ہیں پتا آپ کو, شوال, ذی قعدہ اور ذی الحجہ, یہ تین مہینے ہیں, ذی الحجہ کے بھی 10 دن پہلے, تو یہ 2 مہینے اور 10 دن ہیں جو حج کے مہینے. اب ان کے اندر کیا مطلب ہے کہ حج کے مہینے, مطلب یہ ہے کہ فرسٹ شوال کو اگر کوئی احرام باندھ کے چل پڑتا ہے نا, میقات پہ احرام باندھ لیا, اس نے نیت کر لی تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی رمضان کی 29 تاریخ کو یا رمضان میں ہی چل پڑے وہ حج کرنے کے لیے, اور رمضان میں ہی اس نے احرام باندھ لیا نیت کر لیا, تو اس کا حج نہیں ہوگا. حج صرف اگر یہ فرسٹ شوال سے آگے, فرسٹ شوال سے شروع ہوتے ہیں یہ ٹائم, صرف اس کے اندر وہ یعنی شوال ہے, ذی قعدہ ہے, ذی الحجہ کے شروع کے دن ہیں, ان میں صرف وہ اگر احرام باندھتا ہے اور نیت کرتا ہے حج کی تو تب اس کا حج ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ فمن فرض فیہن الحج, تو جو کوئی فرض کرے ان میں حج کو, کیا مطلب ہے اس کا فرض کرے, یعنی جس نے اپنے اوپر فرض کر لیا. فرض اپنے اوپر کیسے ہو جاتا ہے, وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جب انسان, جیسے یہاں پہ کہا گیا نا وتیم الحج والعمرۃ للہ, جب انسان میقات پہ آئے اور وہ احرام باندھ لیتا ہے, وہ نیت کر لیتا ہے نا حج کی یا عمرے کی, تو یہاں پہ تو حج کی بات آ رہی ہے, جو حج کی جس نے نیت کر لی تو اس نے اپنے پر فرض کر لیا, اب حج, اب اس کو لازمی حج کرنا ہے, اس کو پورا کرنا ہے حج, یہ ایسے نہیں جا سکتا. وہ بات سمجھ آئے کہ اب میرا موڈ بدل گیا, فار ایگزامپل ایسے بات کہہ رہی ہوں کہ اب تو میں جا رہا ہوں یا اب نہیں میں نے کرنا, نہیں اب اس کے اوپر فرض ہو گیا حج, تو اب اس کے لیے نا 3 پابندیاں لگائیں گی. آپ کو پتا ہے نا احرام کی پابندیاں تو آپ کو پتا ہوں گی, خوشبو نہیں لگانی ہے, بال نہیں کاٹنے ہیں, یہ ناخن نہیں کاٹنے ہیں, اس طرح کی کئی پابندیاں احرام کی, لیکن یہاں پہ اسپیسیفک 3 پابندیوں کا ذکر کیا گیا کہ حج میں یاد رکھنا. یہ آپ کو پتا ہے حج کا جو احرام ہوتا ہے نا وہ تو ذرا لمبا ہوتا ہے, عمرے کا احرام تو تھوڑی دیر میں چند گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے, تو وہ تو آپ مطلب احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں, تو اس کی ریسٹرکشن اتنی لمبی نہیں ہوتی, لیکن حج کی زیادہ لمبی ہوتی ہے, کئی دنوں کی بات ہوتی ہے. اب اس کے اندر 3 کام نہیں کرنے ہیں, جو کان کھول کے سن لیں, کیونکہ حج پہ جانے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. نمبر 1, فلا رفث, کوئی بھی ایسی میاں بیوی کی جو شہوت کی بات ہوتی ہے, میاں بیوی نہیں کر سکتے تو کسی اور کے ساتھ تو دور کی بات ہے نا, وہ تو بالکل بھول ہی جائے. میاں بیوی جہاں پہ جائز ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ کرنا تو دور کی بات, وہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسا اشارہ, کوئی ایسی ہنٹ دینا آدمی عورت کا ایک دوسرے کو جو اس سے متعلق ہو سیکشوئل بات سے, وہ بھی ممنوع ہے, نہیں کرنا. سمجھ آ گئی بات یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں, کیوں یہ ریسٹرکشن کیوں لگائی گئی, تاکہ انسان کا دھیان اللہ کی طرف رہے, نہ کہ ان چیزوں میں پڑا رہے. ٹھیک ہے, تو فلا رفث, یہ تو ایزی بات ہو گئی. ولا فسوق, اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام, کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے. گناہ کا کام آپ کیسے ہوگا, اب گناہ کے کام میں یہ دیکھیں نا, اب آپ مینا میں, آپ کے پاس بہت دن ہے مینا میں ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی زیادہ کرنے کا کام بھی نہیں ہے, کوئی بہت نمازیں بھی نہیں ہیں, کوئی بہت کچھ, کہیں جانا بھی نہیں آنا بھی نہیں, اب بیٹھے ہوئے کیا, وہ رمی کرنی تھی وہ کر کے آ گئے, اب 11-12-13 دس سے صرف بیٹھے ہوئے, 10-11-12-13 آپ وہیں پہ ہیں, اب ان 4 دنوں میں کچھ اور تو مشغلہ ہے نہیں, تو اب کیا ہوتا ہے عورتیں آپس میں باتیں شروع کرتی تھیں, پھر ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں, پھر اس کی غیبتیں, اس کی چولیاں, اس کی یہ, کبھی کچھ بات کبھی کچھ, تو یہ چیزیں وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ تو ہمارا ایک ٹریننگ کیمپ ہے جہاں پہ بھیجا ہوا ہے,
वहां तो बिल्कुल ही नहीं करनी थी, और वहां पे जाके ये शुरू कर दिया। तो कोई फुसूक की बात नहीं करनी, कोई गुनाह की बात नहीं करनी, ये सब गुनाह की बातें ही हैं। इसी तरह झूठ हो गया, इसी तरह अब अपने फोन के ऊपर लोग लगे हुए हैं तो फोन पे को कुछ देख रहा है तो कुछ गुनाह की चीज देख रहा है, कुछ बात कर रहा है किसी से जिसमें कोई झूठ है, कि जिसमें अब व्हाट्सएप वहां पे भी चल रहा है, वहां पे भी सारी दुनिया के साथ रابطे के अंदर है। अब क्या करें, वक्त तो काटना है ना किसी तरह। जब अल्लाह के जिक्र की आदत घर में नहीं होती ना इतनी करने की, तो वहां पे भी जाके कोई हम फरिश्ते नहीं बन जाते, वहां भी जाके कोई हमें ऐसा नहीं हो जाता कि हम एकदम बहुत नेक बन गए हैं। अब मीना में आते, अब वो आते कहाँ जाती है, अब वो जो एडिक्शन फोन की है वो वहां पे भी नहीं जाती, वहां पे भी फोन निकाली है वही काम वहां पे शुरू कर दी। जैसे यहाँ पे देखते थे, जैसे यहाँ पे चिट चैट थी, वैसे वहां पे भी कर रहे हैं। तो वो ये वक्त है कि जिस वक्त इंसान को ये समझना है कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, इसीलिए तो बार बार तकवा का आगे ना आगे भी आएगा, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, मुझे ये समझना है मैं किस पर्पज के लिए आई हूँ यहाँ पे, ये काम नहीं मैं कर सकती, तो पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ लगाना है। फिर वहां पे इतनी मिक्सिंग होती है मर्दों की औरतों की, जितनी कि आप यहाँ पे कभी भी उस तरह से मिक्सअप नहीं होते आदमियों के साथ। आदमी सामने से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, मर्दों की नजरों अगर औरत पे पड़ गई है तो वो अपनी नजर हटा ले, तो कोई किसी किस्म का फुसूक ना हो। बाज दफा इन अवॉइडेबल हो जाता है मर्दों से, साथ साथ वो चल रहे होते हैं साथ साथ, तो उस वक्त भी जो चीजें इन अवॉइडेबल हैं वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके। फिर और क्या नहीं करना, जिदाल नहीं करना, जिदाल झगड़े। अब झगड़े तो बहुत होते हैं, झगड़े कैसे होते हैं, बहसें हो रही हैं, कभी तो फिक्री बहसें शुरू होती हैं कि हमारे तो वो कैसे कहते हैं, हमारे तो ईमान ने हमें ये कहा है, हमने तो जमा नहीं करके पढ़नी नमाजें, हमने तो ऐसे नहीं करना। कभी बाथरूमों में झगड़े हो रहे होते हैं, तुमने पानी क्यों यहाँ पे फेंक दिया, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, कभी कुछ हो रहा है, तो तरह तरह के झगड़े, तरह तरह की बातें, गुस्से हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये नहीं, जगह किसी ने किसी की ले ली तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इस तरह का कोई काम भी नहीं किया जा सकता वहां पे। इसलिए ये तीन चीजों को तो पल्ले बांध ले, अगर एहराम की हालत में इस तरह के कोई काम हो जाता है, मसलन है कि किसी से रफस हो गया, तो अब उसका तो गुनाह तो उसके ऊपर है ही है, जो अल्लाह ताला की हद को उसने तोड़ा है, फिर इबादत का सवाब भी खत्म हो गया, फिर उसको ये दोबारा हज रिपीट करना पड़ेगा, उसको फिदिया भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मामूली बातें नहीं है, इसीलिए तो है ना कि हम शऊरी हज किया करें, वो हज नहीं कि बस अब हमारे पास पैसे आ गए तो हज को जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बस हज तो करना ही है ना, तो हज भी एक रसम ही रह गई है, तो हज हो गया बस हमारा, सर से उतारने वाली एक चीज, वो नहीं होना चाहिए। समझ के जाना चाहिए कि हज क्या है, वमा तफअलू मिन खैरिन यालमुल्लाह, और जो भी तुम नेकी करोगे ना, लेकिन जो चीजें ममनू है ना उनका तो बता दिया गया कि ये तीन चीजें ममनू है, तो फिर अब इंसान कहता है फिर करें क्या, कुछ भी नेकी करो अल्लाह उसको जानता है। नेकी के तो वहां पे बहुत मौके होते हैं, आप अल्लाह का जिक्र करें, आपके पास कितनी फरागत होती है, आप कुरान को पढ़ें, आप दूसरों को कुछ सिखा दें, नहीं तो किसी से सीख लें, नहीं तो किसी की हेल्प कर दें, बहुत लोग हेल्प कर चाहते हैं वहां पे, नहीं तो कोई बीमार है उसकी कोई तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ कर दें, नहीं तो किसी को आप वैसे ही किसी को दिल अच्छा कर दें, उसको कुछ चाय पिला दें, उसको कोई खिदमत कर दें, कोई और पानी ला के दे दें, किसी कोई भी हेल्प कर सकते हैं आप, तो दूसरों की वहां पे हेल्प भी की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ, कोई अच्छी बातें सिखाई जा सकती हैं, कोई इल्म की बात की जा सकती है, कोई और अपने ऊपर कोई मुहासबा अपना किया जा सकता है। घरों में बहुत काम होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तो वहां पे भी जाके कोई खैर का ही काम ना करें, बस सोए रहें या फिर फुसूक और जिदाल में पड़े रहें, तो फिर वहां जाके भी क्या किया। तो कहा गया यालम फुल्ला, खैर का जो भी काम करोगे ना, चाहे हज में चाहे यहाँ पे, हमें ये बहुत फिक्र होती है लोगों को पता चला के नहीं। इवन हम किसी को कोई अच्छा मशवरा दे दें, मिसाल के तौर पर अच्छा मशवरा आपने किसी को दिया, उसने वो कोई काम कर लिया, अब लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की, अब आपको ये हुआ कि हाय लोगों को ये तो पता नहीं चला कि ये इसका आइडिया तो मैंने ही दिया था ना, कैसे पता चले लोगों को? अब आप सारों को बताते जाते हैं। देखो आइडिया वैसे ये मेरा था, मैंने ही इसको कहा था करने को, क्योंकि आपको ये हो रही है कि अभी इसको तो तारीफ हो गई, अब मेरा क्या बनेगा? मेरा तो किसी ने भी नहीं तारीफ की, मेरा तो किसी को पता ही नहीं चला। तो तुमने जो भी किया है या आलम उल्ला, कभी हम ये भी सोचा करें जब कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं ना, तो किसी को भी नहीं पता चल रहा ना। अल्लाह तू देख रहा है ना कि मैं ये कर रही हूँ, अल्लाह से बात किया करें, उसको बताया करें, अल्लाह तूने देख लिया ना मैंने ये कर लिया, कितनी खुशी होगी फिर। और वो नेकी सेव हो जाती है, वरना नेकी जाया हो सकती है। तो ये जो शौक है ना दिखाने का कि हाय इनको तो पता ही नहीं चला कि ये खाना मैं लेके आई थी, सबने खा भी लिया, लो अब कैसे पता चलेगा उनको, हम किस तरह बताएं? ये चीज मैंने बनाई थी, किसी ने पूछा ही नहीं, अब कैसे इनको पता चले? इनको तो इन्होंने समझा कि सारा दूसरे ने, किसी ने बनाया नहीं, ये तो मैंने बनाया था, अब कैसे बताऊं? ये इतनी छोटी छोटी चीजों में भी ना हमें इतनी ये हो जाती है कि हाय मेरा नहीं पता चला किसी को। ये जो शौक है ना इसको हमने खत्म करना है कि मेरा क्यों नहीं पता चला किसी को, बस कहीं अल्लाह को पता चल गया ना। वत्तकूनी, अच्छा नहीं अभी पीछे का रहता है, वत्तज़व्वदु फइन्ना खैरज़्ज़ाद तक्वा, ये मैं बात कहना चाह रही थी कि ठीक है वहां चले तो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वहां पे तकवा भी तो लेके जाना है, सारा सामान रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ज्यादा फिक्र ये भी होगी कि वैसलीन भी रख ली कि नहीं, सेफ्टी पिन रखी कि नहीं, हिजाब में लगाने के लिए ये वाला हिजाब रखूं कि वो रखूं कि वो सॉक्स रखूं कि ऐसी रखूं, जूते कौन से पहनने हैं मैंने, ये सब चीजों का इंतजाम है। लेकिन ये नहीं सोचते कि सबसे बेस्ट चीज जो ज्यादा राह है, जो ले जाने का सामान है, जो वहां पे चीज की जिस सामान की सबसे ज्यादा जरूरत है वो तकवा है, उसकी तरफ ध्यान भी दो, वो भी तो लेकर जाओ कि अल्लाह का डर, ये चीज, ये शौक कि मैं नेकी करूं, ये भी तो लेके जानी है, ये भी खौफ कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, कोई फुसूक जिदाल रफस इनमें से ना कुछ हो जाए मेरे साथ। और जिदाल अक्सर जो है ना, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अच्छी तो नहीं मतलब सही बात की थी, उन्होंने कहा कि भाई कहीं पे भी ना मियां बीवी की लड़ाई हो तो वहां जाके जरूर हो जाती है। अब गए हुए वहां पे मेरे ख्याल फरागत ज्यादा होती है, तो जब एक कमरे में भी होंगे तो तब भी मसला है। तो वो कह रही कि वो एहराम, एक तो एहराम में वैसे ही नहीं झगड़ा कर सकते, अब हज के दिन है तो वहां पे कहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, रमी करने जा रहे थे कहीं, वहां जा रहे थे तो लड़ाई हो गई, तो लड़ाई तो किसी से भी नहीं करनी वहां, तो फिर इसका मतलब कितना जुबान को कंट्रोल करके जाना चाहिए, समझ लें जब एहराम पहन ले, नियत कर ले तो जुबान को लॉक लगा ले, अब जुबान से सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो इसके अलावा ना कुछ करें, वरना सारा हज का सवाब खराब हो जाएगा, हज मबरूर नहीं रहेगा फिर, जिसमें सारे गुनाह पिछले माफ हो जाते, फिर वो हज तो ठीक है आपका हो गया, एक फर्ज अदा हो गया, लेकिन हज मबरूर वाला जो अजर अगर लेना चाहते हैं ना, तो फिर इन चीजों से बचना पड़ेगा। तो अब जिन्होंने पिछला कर लिया अब उनको क्या करें, वो तो तौबा इस्तगफार ही करें और क्या करें, तो दुआ करें अल्लाह ताला दोबारा बुलाए, फिर जरा ये आयतें पढ़ ली हैं तो अब जरा बेहतर वाला हज करेंगे। तो पहले जमाने में ना लोग ऐसे ही चला जाया करते थे, वो कहते थे कि हज पे जा रहे हैं तो कोई नहीं वहां पे, बस जैसे वो कहते ना बस अल्लाह के ऊपर भरोसा हमने कर लिया, कुछ हो ही जाएगा वहां जाके, बस चल पड़ो। तो फिर वहां पे गए तो अब जाहिर खाना पीना भी तो है, अल्लाह के भरोसे को तो खा तो ही ना सकते, अब खाएं भी भी पियेंगे भी, कहीं रहना भी है, कुछ तो होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, बस तजव्वदु, ज्यादा राह लेके जाओ, ये नहीं कि बस अल्लाह पे हमारा भरोसा है ना, फिर वहां जाके भीख मांगना शुरू कर देना, लोगों से मांग रहे हैं ये को मुझे ये दे दे, कोई खाना खिला दे, कोई पानी पिला दे, नहीं ये नहीं, अपना खुद इंतजाम करके जाओ। खाना पीने का पहले जमाने में तो साथ लेके जाया करते थे, तो अब आज के वक्त में खाना पीना तो साथ नहीं लेके जाते, लेकिन जो भी रास्ते का सामान है वो लेकर जाओ, ताकि तुम्हें वहां पे ना किसी और के आगे हाथ फैलाने पड़े। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई ये नेकी के मुनाफी हो, हम क्यों सामान लेके जाए, हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, वो खुद ही हमें खिला पिला देगा, नहीं तुम लेके जाओ अपने जो भी पैसे हैं, जो भी वहां का खर्चा है वो आप करें, अगर किसी के पास हर चीज नहीं है वहां पे करने के लिए तो वो उसके ऊपर तो हज फर्ज ही नहीं होता, इसलिए तो हज फर्ज ही तब होता है जब ज्यादा राह भी हो, इंसान की सेहत भी हो, ज्यादा राह भी हो, तो सबसे बेहतरीन ज्यादा राह फिर तकवा है। अच्छा एक बात और पीछे रह गई, ये इसी से जो ज्यादा राख की बात जहां पे आई तो याद आ गई मुझे कि वमा तफालु मिन खैरिन यालमहुल्ला, इसमें ये भी है कि वहां पे सदका व खैरात करना, आप जो भी सदका व खैरात कर सकती हैं वहां पे करें। आज हर इबादत का वहां पे देखिए ना अजर कितना बढ़ जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सदका व खैरात का भी अजर वहां पे बढ़ा दे, तो अगर आप वहां पे जाके वहां के जो गुरबा मसाकिन को दे सके, खास तौर पे जो वहां पे लोग काम करने वाले हैं लेकिन उनकी बहुत थोड़ी पेज होती है, तो उनको दे दें, सफाई करने वाले हैं, जो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कोई और लोग हैं, तो उनको दे, कितनी सारी खैर वहां पे तो हो सकती है ना सदका और खैरात के अलावा। वैसे भी आप एहराम की हालत में, वैसे ही एक इबादत की हालत में, आप वैसे ही एक अल्लाह के रास्ते में सफर में, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हाजियों की खिदमतें भी कर रहे हैं। हाजी की खिदमत करना कितना बड़ा ऑनर है, तो आप सिर्फ लोगों की खिदमत नहीं कर रहे, याद रखें वहां पे तो हाजी की खिदमत हो रही है, तो हज वाले की खिदमत तो इतना बड़ा ऑनर था कि जो कुरैश को मिला था उसको अब अपने बहुत बड़ी अपने लिए समझते थे सआदत। व तकुनी या उलिल अलबाब, ए अकल वालो तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तकवाई होगा तो ये सारी इबादात में जान होगी, अगर तकवा नहीं होगा तो बेरूह होगी, बस गए भी रमी भी की जमारात रमी, कुर्बानी भी हो रही है, सर भी मुंडाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, तो क्या पाया भाई। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम। अब एक और चीज बता दी गई जो जायज है हज में, ठीक है, पहले हमें क्या बताया गया कि वो चीजें नहीं करनी जो तीन थी। अब कोई लोग ये सोच सकते हैं कि वहां पे अगर हम जाएं और हम तिजारत करें, मतलब कोई सामान हम ले जाते हैं वहां पे हम बेचते हैं, तो क्या ये जायज है, जबकि हम तो हज पे जा रहे हैं, तो वो सही होगा या नहीं, या वहां पे जाके कोई बंदा जाए और वहां पे कुछ मेहनत मजदूरी भी कर ले, साथ हज भी उसने कर लिया, लेकिन कोई काम भी कर लेता है थोड़ा छोटा मोटा, उससे उसको कुछ पैसे बन जाते हैं, तो क्या सही है या नहीं, या कोई डॉक्टर जाता है वहां पे कोई मरीज चेक कर लेता है उसको उसकी फीस मिल जाती है, तो सही है या नहीं। तो लैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई तुम पे इसमें गुनाह नहीं है, अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुम तलाश करो फजल को अपने रब की, अल्लाह का फजल तलाश करो तुम, ये अल्लाह का फजल है, किसको कहा गया अल्लाह का फजल, रोजी को, ये कोई तुम रोजी तलाश करते हो ना, कोई तुम पैसे वहां पे कमाते हो, कोई तुम चीज वहां पे तिजारत की बेचते हो खरीदते हो कुछ इस तरह का करते हो, तो इसमें कोई गुनाह नहीं, मतलब आज किसी ने वहां से कुछ चीजें खरीद ली के यहाँ लाके बेचेगा तो क्या ये गुनाह है, क्योंकि हम तो सफर पे गए हैं वहां पे हज के, तो अब इस किस्म की बिजनेस ट्रांजेक्शन करना ठीक है क्या, तो इसमें कोई हरज नहीं है अगर तुम इसमें भी तलाश करो। अब यहाँ पे रिस्क नहीं कहा गया, फजल कहा गया। फजल क्या चीज होती है, जो इंसान डिजर्व नहीं करता, उसका हक नहीं होता लेकिन उसको दी जाती है, यानी तुम ये ना समझो कि ये मेरा हक है तो मुझे मिली, मैंने चूंकि इतनी मेहनत की, मैं इतनी काबिल हूं, मैं इतनी लर्नेड हूं, मैं मुझे ये हुनर आता है इसलिए मुझे मिली, नहीं, जो रिस्क भी इंसान को मिलता है वो सरासर अल्लाह का फजल होता है, उसकी इनायत होती है, ठीक है। فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, फिर जब तुम पलटो अराफात से तो अल्लाह का जिक्र करो मशारे हराम के पास, यानी आप जो आप में से हज पे पहले गए हैं उनको तो ये बात समझ आएगी, जो नहीं गए हुए वो सुन के समझने की कोशिश करें, शायद उनको इतनी ना समझ आए, फिर इंशाल्लाह जब जाएंगे तो अल्लाह ताला लेके जाए सबको, कि जब तुम पलटो अराफात से, आपको पता है कि पहले हम मीना जाते हैं 8 तारीख को, फिर उसके बाद 9 को अराफात जाते हैं, फिर उसके बाद अराफात से शाम को जब मगरिब हो जाती है तो बगैर मगरिब पड़े हुए हम मुजदलिफा की तरफ जाते हैं, मुजदलिफा एक वादी है, वैली है, ठीक है, वहां पे एक पहाड़ है उसका नाम है मशरे हराम, तो बेसिकली मशरे हराम कह के मुजदलिफा ही मुराद है, कि यानी आप फिर जब पलटो अराफात से, यानी आपने अराफात में मगरिब की अजान हो गई है, अब वो निकलती हैं बसों में भी, लोग पैदल भी सब जा रहे हैं, फिर उस वक्त जब आप निकलते हैं तो फज़कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम, तो मशरे हराम पे के पास यानी उस वैली में मुजदलिफा की आप अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र क्या करो, मतलब वहां पे जाके आप सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, मगरिब और इशा जमा करके पढ़ी थी, तो हमने क्या करना है अराफात में मगरिब नहीं पढ़नी, हमने मुजदलिफा में जाके मगरिब इशा जमा करनी है, پھر اس کے بعد نماز کے اذکار ہوتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ وہاں پہ سو گئے تھے مزدلفہ میں، تو ہم نے بھی وہاں پہ سو جانا اور وہاں پہ ٹھہرنا ہے رات کو. اب وہ ایک بالکل ایسی جگہ ہے کہ چٹیل میدان ہے، اب اس کے اندر وہاں پہ رات گزارنی ہے. اور پھر اٹھتے ہیں آپ تو فجر کے بعد جب آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بھی لمبا فرمایا تھا اس کے ساتھ، تو یہ پھر اللہ کا ذکر ہو گیا. اور جو سونا ہے وہ بھی ثواب کا کام ہے، اس لیے کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں نا، تو اس حالت میں اگر آپ سو بھی رہے ہیں تو یہ اس لیے سو رہے ہیں کہ کل کو ایک لمبا دن ہے، اس میں بہت سارے کام کرنے ہیں، رمی جمرات ہے، قربانی ہے اور یہ سب کرنے ہیں، تو اس سے پہلے میں اپنے آرام کر کے اپنی انرجی گیدر کروں تاکہ میں کل تازہ دم ہو کے اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ تعالیٰ کے یہ سارے جو حج کے مناسک ہیں پورے کر سکوں. وہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے. یاد رکھیں جو کام بھی آپ اس نیت سے کرتے ہیں نا کہ میں اپنے گھر میں بھی اگر آپ سوتے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، میں جلدی اس لیے سو رہی ہوں کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، میری تہجد نہ خراب ہو جائے، آپ یقین کریں ساری آپ کے رات کا سونا عبادت میں لکھا جائے. اور کیا چاہیے ہمیں اس کے برعکس؟ اگر انسان ہے سونا تو ہے ہی، وہ تو ہر ایک نے سونا، کافر بھی سو رہا ہے، مسلمان بھی سو رہا ہے، ایک کا سونا اس کے لیے ثواب کا باعث بن گیا، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ملا، بس وہ سویا تو وہ بھی تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا. تو دیکھیں بعض دفعہ انسان ان چیزوں کو سمجھ کے کس طرح اپنے لیے اجر کما سکتا ہے. اسی لیے اگر ہم اپنی پارٹیز، اپنی یہ اس طرح کے ایونٹس ارلی رکھے، صرف اس خاطر کہ اگر میں نے دیر کی، جتنے لوگ میرے گھر سے جائیں گے وہ جا کے لیٹ سوئیں گے، اور لیٹ سو کے پتہ نہیں پھر فجر پہ بھی اٹھ پائیں گے نہیں، تہجد کو تو چھوڑ ہی دے، ان کی فجر لیٹ ہوگی، تو آپ نے بھی اجر کما لیا اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں. تو ہم اپنی نا اپنے اسکیڈولس کو نا نمازوں کے گرد گھمایا کریں. کسی کو اس وقت نہ بلائیں جس وقت عین نماز کا وقت ہے، اس وقت وہ کیسے آ سکتا ہے؟ یا تو اپنے گھر سے نماز پڑھ کے چلے تو آپ کے گھر لیٹ پہنچے گا، آپ کے گھر آ کے نماز پڑھے گا تو پھر اس کی نماز قضا ہو جائے گی. اس طرح اپنے اسکیڈول کو ہمیں رکھنا چاہیے. تو خیر یہ تو سائڈ کی بات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ان یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی، جیسے اس نے تمہیں سکھا دیا، جیسے اس نے تمہیں بتا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی من مانے طریقوں سے نہیں کرنا، بلکہ وہی طریقہ کرنا ہے جو اللہ نے بتا دیا. آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کچھ طریقے ہیں جو ہم نے خود ہی ایجاد کر لی. مثال کے طور پہ ایک طریقہ آپ کو بتاؤں، اللہ ہو کا وظیفہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں بس آپ یہ کرو تاکہ آپ کی دھڑکن بھی اللہ ہو بولنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اللہ ہو کا ذکر بتایا یا اور اذکار ہیں اپنی طرف سے بنائے ہوئے؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار سے بھی اچھے ہیں؟ یہ تو صرف مجھے بتا دیں لوگ، کہتے ہیں یہ پڑھ لیں کہ نہیں پڑھ لیں. بس نہیں پڑھ لیں، آپ دیکھیں پہلے کہ وہ سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. مثال کے طور پہ کئی درود ہے جو مسنون نہیں ہے، کسی اور نے لکھے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کیا میرے نبی کے الفاظ سے بھی زیادہ اچھے ہیں؟ جو انہوں نے درود سکھائے ان سے بھی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں آپ کو؟ تو فیصلہ تو پہلے یہ کر لیں نا کہ کس کے الفاظ زیادہ آپ کو پسند ہیں، کس کے الفاظ زیادہ اچھے ہوں گے، کس کے زیادہ کمپریہنسو ہوں گے، کس کے زیادہ مجھے اجر و ثواب دینے والے ہوں گے. تو ذکر بھی وہ کرنا ہے جیسی کہ اللہ نے رہنمائی کی تمہاری، اپنی طرف سے نہ شروع کر لیا کرو کہ میرا یہ آئیڈیا آیا ہے اس طرح کیا جائے. تو اب مثلا کو کر میں تو سوچتی ہوں کہ اگر سر نیچے اور پیر اوپر کر کے ذکر کیا جائے اس میں زیادہ ثواب ملے گا. بھائی آپ کہاں سے یہ کہہ سکتے؟ آپ بس کو دلیل ہے؟ یہ تو اس طرح خود سے نہیں نکال سکتے، جیسے اللہ نے ہدایت دی. اگر آپ اس ایک بات کو سمجھ جائیں گے نا، یہ تین صرف لفظ ہیں، وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، صرف اتنی بات کو سمجھ لیں اور یاد کر لیں. جب آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہ والا اس طرح سے طریقہ کریں تو کہیں نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. ایک جواب ہے نا آپ کے پاس، اللہ نے اگر یہ بتایا ہے نا اپنے نبی کے ذریعے تو میں یہ ذکر کروں گی. کیونکہ ذکر کس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کس کو خوش کرنا ہے؟ آپ نے اجر اللہ سے لینا ہے، تو جو اس نے بتایا نہیں وہ کر رہے ہیں. دین کے معاملے میں خود اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے. دوسرا معنی کما کا کیا ہے؟ بوجہ، بیکوز. وذکرو یاد کرو اس کو، کیوں؟ بیکوز، بوجہ اس کے کہ ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی.
देखो इतनी बड़ी उसने तुम्हें नेमत दी है, तुम इस वजह से उसका जिक्र करो। देखिए जिसको नेमत हिदायत की मिल जाए ना, वो इतना खुशकिस्मत है, उसको पता है कि ये मुझे क्या बड़ी चीज मिल गई। जिसको मिली ना, उस अंधे को क्या पता कि रोशनी क्या होती है, नूर क्या होता है, वो तो अंधेरों में रहने का आदी हो गया। पता नहीं है हम भी इस हिदायत की नेमत की कदर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें इसका एहसास भी है कि नहीं है कि हमें कितनी बड़ी चीज अल्लाह ताला दे रहा है। हमें पैसे मिले तो हमें बहुत खुशी होती है, आए किसी को बोनस मिल गया इतनी खुशी, वो तो पार्टी देता है इस बात पे कि मुझे बोनस मिला, मेरी पे बढ़ गई है, तो उसके ऊपर ट्रीट दी जा रही है। लेकिन हिदायत की नेमत जिसकी कोई कदर नहीं है, ये तो मिले नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मिल भी गई है तो कोई नहीं, क्या कौन सी ऐसी बड़ी चीज है। हिदायत की नेमत को छोड़ के कहते हैं पैसों की नेमत मिल जाए, वो मिल जाए, हालांकि वो पता नहीं, वो तो इम्तिहान ही बन जाए कल को। तो याद करो इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हें हिदायत दी, और हिदायत बहुत बड़ी नेमत है, जिसको कि इतनी बड़ी नेमत मिल जाए, जिसका दिल चाहता है ना कि वो गुण गाए उसके, जिसने उसके ऊपर ये एहसान किया, वो चर्चे करे, वो उसका नाम बुलंद करे कि उसने मुझे दिया है। जैसे हमें कोई देता है तो हम थैंक यू करते ही हटते, इतने बड़े थैंक यू के नोट भेजते हैं, कितनी दफा उसका शुक्रिया अदा करते हैं, बिछ बिछ जाते हैं। तो जिसको ये कदर हो कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, वो तो उसके बहुत चर्चे करेगा, बहुत जिक्र करेगा, बहुत याद करेगा उसको। तो बहुत प्यारी बात है। वह इन कुन तुम मिन कबली ही लमिन दौलीन, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है, इससे पहले तुम्हें कहाँ कुछ पता था, तुम तो गुमराह थे। यानी इस्लाम की नेमत दे दी तुम्हें, देखो तुम्हें हिदायत दे दी ना इस्लाम दे के, तुम्हें ये राह दिखा दी, तुम्हें ये मनासिक सिखा दी है हज के। पहले तो लोगों को अपने तौर पे कई चीजें की हुई थी, आप सोचे कि हज को ना मेला ठेला बनाया हुआ था उन्होंने, या हज क्या है, पार्टी टाइम है, फन टाइम है, एग्जीबिशन है, यानी सारी दुनिया से चीजें लाके बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये जो खरीदने बेचने की बात पीछे आई फजल की बात, इसमें एक ये भी बात नोट कर लें, याद रखें तिजारत करना वहां पे कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस नियत से ना कोई जाए कि मैं जा ही किस लिए रहा हूं, कि वहां पे जाके कुछ बिजनेस हो जाए, चलो साथ हज भी हो जाएगा, ये नहीं ये कहें हज हो जाए, चलो साथ बिजनेस भी हो जाएगा, साथ चार पैसे भी कमा लेंगे। तो मेन पर्पस इसको ना बनाए कि तिजारत करनी है, मेन पर्पस ये हो कि इंसान हज का फरीजा अदा करे। समझ आ गई बात। अगर कोई हज के ग्रुप भी लेकर जाते हैं या कुछ उससे कोई कमाता है, तो ये नहीं मेन पर्पस होना चाहिए कि ये बस मेरा बिजनेस है, ये मेन पर्पस होना चाहिए कि मेरा हज हो जाए। इसी तरह यहाँ पे कि इससे पहले तुम्हें पता नहीं था, तुम गुमराह थे, तो वो आते थे यहाँ पे अपने बड़ों के चर्चे करते थे, आगे बात आएगी भी, अपने बड़ों की कहानियां उनके किस्से बताते थे, उसके पर फखर करते थे, और बस खरीदो फरोख्त और मेला ठेला और ये वो, बस ये फन टाइम हो गया। तो नहीं, अल्लाह ताला ने फिर हिदायत दी, और देखो इसको कितना मीनिंगफुल बना दिया हज को।